शिवी आर्या से बात करने के लिए डिज़ायर्स के ऑफिस आई हुई थी। वहां उसकी मुलाकात आर्या के बजाय उसकी दोस्त ध्वनि से हुई। ध्वनि ने उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया, जिसके तहत शिवी इस जॉब को 6 महीने से पहले छोड़ नहीं सकती थी। जल्दबाजी में साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से शिवी वो जॉब करने के लिए मजबूर थी, लेकिन ध्वनि के वहां होने से उसे कुछ राहत भी मिली। वो कुछ ही समय में उससे घुल मिल गई और वो उसकी मदद करने के लिए भी तैयार थी। आर्या अपने ऑफिस में बैठकर शिवी का इंतजार कर रहा था। उसे इस बात का पता नहीं था कि वो काफी देर पहले ही ऑफिस आ चुकी थी। आर्या ने घड़ी में टाइम देखते हुए खुद से कहा, थोड़ी देर में लंच ब्रेक होने वाला है। आधा दिन बीत गया लेकिन शिवनंदिनी अय्यर अब तक नहीं आई। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जिन्हें टाइम की कदर ना हो। दुनिया में सबसे कीमती समय है और समय को बर्बाद करने वाले दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़। सोचा नहीं था पिछली बार की तरह इस बार भी प्लेसमेंट के लिए आए स्टूडेंट ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आर्या अपनी जगह से उठा और अब बाहर आया। उसे देखकर जेनी जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो जो प्लेसमेंट के लिए लड़की आने वाली थी वो अब तक आई क्यों नहीं? आर्या ने बाहर आते ही जेनी से सख्त आवाज में पूछा। सर, उन्हें आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, जेनी ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर आर्या चौंक गया। क्या, कब की आ चुकी है? लेकिन मेरे केबिन में तो, वो बोलते हुए रुक गया। उसने कुछ देर रुककर फिर कहा, डोंट टेल मी कि उसे ध्वनि ने अपने ऑफिस में बुला लिया है, मुझे उसका इंटरव्यू लेना था। वो ध्वनि मैम के ऑफिस में ही है। जब सुबह वो आपके केबिन में आई थी तब उन्होंने मुझे उस लड़की को अपने पास भेजने के लिए कहा था। और तुमने उसे भेज भी दिया? एक बार मुझसे कन्फर्म करना भी ज़रूरी नहीं समझा? आर्या ने उसकी तरफ घूर कर देखा। नहीं सर, आपने ही तो कहा है कि जब तक काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तब तक आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। बाकी काम ध्वनि मैम ही संभालती हैं, तो मुझे लगा इस बार भी आपने ये काम उन्हें सौंपा होगा, जेनी ने घबराते हुए जवाब दिया। ठीक है, आर्या ने भी उससे आगे कुछ नहीं कहा और वहां से ध्वनि के फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। कैसी लड़की है, सबसे पहले उसे अपने बॉस से मिलना चाहिए। यहाँ आकर एक बार मेरे बारे में पूछा तक नहीं होगा उसने। कल भी उसका बिहेवियर काफ़ी स्ट्रेंज था। मैंने उसे कंग्रेचुलेशंस कहा, उसका भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना फेस भी कवर कर रखा था। कहीं वो अपनी आइडेंटिटी तो नहीं छुपा रही है, या हो सकता है कि वो कोई क्रिमिनल हो? लिफ्ट से ऊपर जाते हुए आर्या के मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। शिवी के क्रिमिनल होने के बारे में सोचकर ही आर्या को काफ़ी अजीब लगा। नहीं, क्रिमिनल कैसे हो सकती है? यूनिवर्सिटी में ऐसे ही किसी को एडमिशन थोड़ी ना मिलता होगा। पहले उसका बैकग्राउंड चेक होता होगा। मैं भी ना, क्या क्या सोच रहा हूँ, सुबह से ही दिमाग खराब है, तभी उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। लिफ्ट के रुकते ही आर्या के कदम ध्वनि के केबिन की तरफ बढ़ रहे थे। उस फ्लोर पर काम कर रहे लोग उसे देखकर खड़े हो गए और उन्होंने उसे गुड आफ्टरनून विश किया। आर्या ने मुस्कुराते हुए उन सबको बैठने का इशारा किया और ध्वनि के केबिन में गया। वहां पर कोई नहीं था। उन दोनों को केबिन में ना देखकर आर्या ने कहा, लगता है वो उसे उसके डिपार्टमेंट में लेकर गई होगी। कल ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से एक लड़के का प्रमोशन हुआ है, वहीं पर स्टाफ की जरूरत थी। होना हो ध्वनि उसे वहीं लेकर गई होगी। इस बार आर्या ने ध्वनि के पीछे जाने के बजाय उसे कॉल किया। उसका अंदाजा सही था। ध्वनि शिवी के साथ 6th फ्लोर पर थी, जहां प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बना हुआ था। आर्या का कॉल आता देख ध्वनि जल्दी से दूसरी तरफ आ गई। तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे उस प्लेसमेंट वाली स्टूडेंट से मिलना है, उसके बावजूद तुम उसे? ध्वनि के फोन उठाते ही आर्या जल्दी जल्दी बोलने लगा। ध्वनि ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, थोड़ी देर सांस तो ले ले, क्या सारी बातें कि एक ही सांस में बोलनी है तुझे? तेरा मूड खराब था, मुझे लगा लड़की का पहला दिन है और पहले दिन ही तुमने उसे डांटा तो उसका भी मूड खराब हो जाएगा। बस यही सोचकर उसे अपने केबिन में पहले बुला लिया, लेकिन मुझे भी उसे मिलना था, आर्या ने कहा। तो क्या हो गया अगर वो पहले मेरे केबिन में आ गई और मैंने उसे उसका काम समझा दिया? तुझसे मिलने के बाद भी तो मुझे यही करना था। वो अब यहीं पर काम करेगी, तुम जब चाहो तब उससे मिल सकते हो। ध्वनि बातों बातों में आर्या को कन्विंस करने की कोशिश की ताकि वो आज के दिन शिवी से ना मिले। अच्छा ठीक है, आर्या ने उसकी बात तुरंत मान ली। मैं तेरे फ्लोर पर आया था लेकिन तू यहाँ नहीं थी, सोचा उससे मिल लूंगा, पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मिल लूंगा। तेरा काम हो गया है तो लंच साथ मिलेंगे, जल्दी से उसे उसका काम समझाकर मेरे केबिन में आ जाना। ध्वनि ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर कॉल कट कर दिया। उससे बात करने के बाद वो वापस शिवी के पास आई। वो अंदर जा चुकी थी। अंदर आते ही ध्वनि ने शिवी से कहा, सॉरी, वो कॉल आने की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा, तुम इन सबसे इंट्रोडक्शन नहीं कर पाई होगी। कोई बात नहीं, अब तो इन्हीं के साथ काम करना है, काम करते हुए हम एक दूसरे को अच्छे से जान ही लेंगे, शिवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ध्वनि उसके बाद शिवी का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम से इंट्रोडक्शन करवाने लगी। सबसे पहले उसने वहां मौजूद औरत से उसका परिचय करवाया। ये है मिस काजोल श्रीवास्तव, ये तुम्हारी टीम की हेड है। काजोल श्रीवास्तव के बाद ध्वनि उसके पास खड़े आदमी की तरफ इशारा करके बोली, और वो मिस्टर चिराग दास है, ये इस टीम के असिस्टेंट हेड है। जब भी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए मीटिंग होती है तब ये दोनों ही मीटिंग अटेंड करते हैं। उन्होंने शिवी को हेलो कहा। जवाब में शिवी ने भी मुस्कुराकर उनके हेलो का जवाब दिया। काजोल श्रीवास्तव लगभग 40 साल की हल्की मोटी औरत थी। उसने वेस्टर्न कपड़े पहन रखे थे और उसके बाल लगभग कंधे से कुछ ही लंबे थे, जिन्हें उसने पिकटेल में बांध रखा था। उसकी आंखों पर एक बड़ा सा चश्मा लगा था। वहीं मिस्टर चिराग दास भी उन्हीं के हम उम्र थे। वो दुबले पतले थे और उन्होंने भी आंखों पर चश्मा चढ़ा रखा था। उन दोनों से परिचय करवाने के बाद ध्वनि ने वहां खड़े लड़के का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा,
और ये हिमांश है। वो लड़का हिमांश शिवी से उम्र में थोड़ा बड़ा था। वो दिखने में अच्छा खासा हैंडसम ब्लॉन्ड बालों वाला लंबा लड़का था। इनके साथ पहले एक और लड़का काम करता था जिसका नाम दिव्यम था। उसका प्रमोशन हो जाने की वजह से यहाँ एक सीट खाली है, ध्वनि ने बताया। मेरा नाम शिवनंदिनी अय्यर है, मुझे आप सबके साथ काम करने का बहुत एक्साइटमेंट है। आई होप हम यहाँ एक अच्छी टीम बनकर साथ काम करेंगे, शिवी ने अपना परिचय दिया। शिवनंदिनी अय्यर, तुम्हारा नाम कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है, क्या इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म नहीं हो सकता मिस अय्यर, मिस्टर दास ने कहा। वो काफी बड़बोले और मुंहफट थे। उनके इस तरह बोलने पर काजोल हिम की तरफ घूर कर देखा, जिसकी वजह से वो चुप हो गए। आपको कौन सा इसके साथ रिश्तेदारी करनी है, ऑफिस में ही तो काम करते हैं, फिर आप इसे किसी भी नाम से बुलाएं, क्या फर्क पड़ता है, हिमांश ने लापरवाही से कहा। अच्छा, आप लोग साथ काम करिए और एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान लीजिए। कहते हैं साथ काम करने वाले आपस में दोस्त हों तो काम ज्यादा अच्छे से होता है। मैं अब चलती हूँ, वैसे भी लंच ब्रेक होने वाला है, ध्वनि उन सबको वहाँ छोड़कर नीचे चली गई। शिवी को पहले दिन वहाँ थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसके साथ काम करने वाले टीममेट्स काफी अच्छे थे। मिस्टर दास ज्यादा बोलने की वजह से बहुत कम समय में शिवी से काफी घुल मिल गए थे। हिमांश ने कहा, तुम्हारा पहला दिन है इस वजह से तुम्हें इस जगह के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। लंच ब्रेक हो गया है, मैं ऐसा करता हूँ हम लोगों का खाना ऊपर ही मंगवा लेता हूँ।
क्या स्टाफ के लिए खाने के लिए अलग से जगह बनाई गई है, शिवी ने पूछा। हाँ, हमारे बॉस अकड़ू जरूर हैं, लेकिन वो स्टाफ का काफी ख्याल रखते हैं। तुम यकीन नहीं करोगी, इस बड़ी सी बिल्डिंग में एक 5-स्टार रेस्टोरेंट जैसी भी जगह हो सकती है, जहाँ खाने पीने से लेकर रिलैक्स करने का अच्छा इंतजाम किया गया है। लंच ब्रेक लगभग 1 घंटे का होता है, जहाँ तुम आराम से बैठकर खाना खा सकती हो, वहाँ लगी बड़ी सी स्क्रीन पर न्यूज़ देख सकती हो, और जिम करना चाहो तो एक बड़ा सा जिम एरिया भी बना है। कल ऑफिस जल्दी आना, मैं तुम्हें पूरा ऑफिस घुमा दूंगा। अपने ज्यादा बोलने की आदत की वजह से चिराग दास ने एक ही सांस में शिवी को ऑफिस के बारे में काफी कुछ बता दिया। हाँ हाँ, ठीक है, अब तुम थोड़ा कम भी बोलो, थोड़ी एनर्जी काम में भी यूज करो, ना कि बोलने में, मिस श्रीवास्तव ने उसे फिर टोक दिया। क्या मैं ज्यादा बोलता हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बोलता, सिर्फ तुम अकेली इकलौते इंसान ऐसी हो जो ऐसा कहती हो, मिस्टर दास बोले। उन दोनों के बीच की नोकझोंक देखकर शिवी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी तो हिमांश भी हंस रहा था। उसने शिवी के पास आकर दबी आवाज में कहा, मिस्टर दास और मिस श्रीवास्तव ऐसे ही पूरे दिन हमारा एंटरटेनमेंट करते रहेंगे, अगर तुम बोर हो तो बता देना, हम जूनियर को काम करने के लिए अलग रूम भी दिया गया है। सोचा नहीं था पहले ही दिन ऑफिस में सबसे इतना घुल मिल जाऊंगी, काफी अच्छी जगह है, शिवी ने जवाब दिया। उसे लगा था कि वो पहले दिन ऑफिस आएगी तो उसके साथ क्या कुछ नहीं होगा, लेकिन पहले ही दिन वो काफी फैमिलियर हो गई थी, उसे वहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। चलो लंच ऑर्डर करते हैं, बोलो तुम्हें क्या खाना है, हिमांश ने पूछा। कुछ भी ऑर्डर कर दो, मुझे सब चलता है, शिवी ने झिझक के मारे ज्यादा कुछ नहीं कहा। शिवी उन सबसे मिलकर अपनी प्रॉब्लम कुछ देर के लिए भूल गई, वो उनके साथ लंच एंजॉय कर रही थी। वहीं ध्वनि आर्या के साथ उसके केबिन में थी, वो दोनों साथ में लंच कर रहे थे। मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, जब भी मैं उस प्लेसमेंट वाली लड़की मिस शिवनंदिनी अय्यर की बात करता हूँ तो तुम बात को टाल देती हो, अब चुपचाप बताओ वो लड़की कैसी है, आर्या ने पूछा। पहले तुम चैन से खाना तो खा लो, कहते हैं खाना खाते टाइम ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, और ऐसा मुझे तुमने ही कहा था, अब तुम खुद अपने रूल्स तोड़ रहे हो, ध्वनि ने खाते हुए कहा। पहले जब भी वो दोनों साथ में खाना खाते थे तब ध्वनि बोलती रहती थी, जबकि आर्या उसे बार बार चुप रहने का कहता था, लेकिन आज सब उल्टा हो रहा था। ध्वनि चुपचाप खाना खा रही थी क्योंकि वो आर्या से शिवी का जिक्र नहीं करना चाहती थी, वहीं आर्या बार बार उससे शिवी के बारे में पूछ रहा था। कभी कभी हमें अपने रूल्स तोड़ लेने चाहिए, मैंने भी सोचा है कि मैं अपने कुछ रूल्स को बदल लूँ, कुछ बदलाव की शुरुआत अभी से हुई है, जिनमें से एक खाना खाते हुए बात करना है। अब चलो बताओ वो लड़की कैसी है, मैंने तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी। अच्छा हुआ नहीं देखी, तभी यहाँ एक तूफान आने से बच गया, ध्वनि ने खुद से बड़बड़ा कर कहा। फिर उसने आर्या की तरफ देखा और सामान्य आवाज में कहा, लड़की काफी अच्छी है, नाम के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, उसका नाम काफी पुराने जमाने का है, लेकिन वो काफी मॉडर्न है, ज्यादा लंबे बाल भी नहीं है उसके, चेहरे का रंग सांवला है, काफी कॉन्फिडेंटली बात करती है और थोड़ी मोटी है, हाइट भी अच्छी खासी है, तेरे जितनी लंबी। धोनी ने आर्या को शिवी के बारे में सब कुछ उल्टा बताया था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उस दिन उसने मास्क लगा रखा था और आंखों पर गॉगल्स थे, बाल भी माथे पर फैला रखे थे, माना इस वजह से चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसके हाथों का रंग गोरा था, मुझे अच्छे से याद है, उसकी हाइट शायद मेरे कंधे तक आती थी, बाल बांध रखे इस वजह से पता नहीं चला, लेकिन उसके बाल लंबे लग रहे थे। तूने तो कहा था तूने उसे देखा नहीं और अब पूरी डिटेल दे रहा है, इतना गौर से कभी तूने मुझे भी देखा है या नहीं, ध्वनि ने उसकी तरफ घूर कर देखा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने कहा वो लड़की मोटी थी, पर उस दिन तो मोटी नहीं लग रही थी,
आर्या ने ध्वनि के झूठ को लगभग पकड़ लिया था, लेकिन ध्वनि ने उसकी बात को काटते हुए कहा, हो सकता है उसने अपने हाथों पर मेकअप लगाया हो जिसकी वजह से वो सफ़ेद लग रहे हों। वो तुमसे दूर थी इस वजह से तुझे हाइट का अंदाज़ा नहीं हुआ होगा। हाँ, याद आया, उसने कहा था उस दिन उसकी कमर में दर्द था, इस वजह से वो थोड़ी झुकी हुई थी। और तुझे नहीं पता लड़कियाँ खुद को पतला दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं करती? उसने अंदर कम कपड़े पहने होंगे, साथ ही बॉडी शेपर भी पहन रखा होगा ताकि वो अच्छी दिखे। आर्या को शक ना हो इसीलिए ध्वनि कुछ भी बोले जा रही थी। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी हमें उसे उसके लुक के हिसाब से नहीं उसके काम के हिसाब से जज करना है, फिर क्या फर्क पड़ता है वो कैसे भी दिखे। चल अब उसे छोड़ और खाने पर ध्यान दे। आर्या की बात बदलने की वजह से ध्वनि ने राहत की सांस ली। उसने अपने मन में कहा, आज तो मैंने बात को टाल दिया, लेकिन कभी ना कभी ये उससे मिलने की जिद करेगा ही, तब इसे टालना सच में बहुत मुश्किल होने वाला है। ध्वनि और आर्या साथ में खाना खाने लगे। खाना खाते हुए ध्वनि को पहली बार टेंशन महसूस हो रही थी, वो भी शिवी की वजह से।